और इस तरह के प्रश्न जो है एक ही होंगे। अगर धर्म एक है, भगवान एक है, तो इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों होंगे और धर्मों का आपस में युद्ध क्यों हो रहा है? तो ये सारे प्रश्न जितने भी आपके बेसिक प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को इन छह सेशंस में हम उत्तर देते हैं। और हर सेशन के एंड में आप लोगों का प्रश्न उत्तर होगा तो आप ओके माइंड है ना, कोई भी प्रश्न पूछिए ना, ये मत सोचिए कि कैसा लगेगा, पूछो कि नहीं पूछो, कोई भी प्रश्न हो किस तरह का आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक जो है वो भगवान के अस्तित्व के ऊपर है कि सदियों से हमारे भारतवर्ष में लोग जो है वो धर्म को अपनाते आए हैं अपने जीवन में, और आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें सबसे बड़ा समस्या के यही है कि आज की युवा पीढ़ी इसको नहीं मानती है, बहुत कम लोग हैं जो भगवान विश्वास करते हैं जैसे कि आप लोग हैं, तो लोगों के बीच में बहुत चर्चा विवाद है कि भगवान है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवान किसी की कल्पना है, भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, ये सब कल्पना है, किसी ने भगवान को देखा है क्या, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। इसका फाउंडेशन ऐसा प्रश्न क्यों आता है मेरे मन में कि इसका एक साधारण उत्तर ये है कि लोगों को भगवान में विश्वास नहीं, और जैसा एक चीज है भले लोग अगरबत्ती दिखाते हो लेकिन पूरा विश्वास नहीं होता, क्योंकि घर में कोई बगल में मंदिर होता है अगरबत्ती दिखाते हैं लेकिन किसी से पूछिए का भगवान आपको पूरा विश्वास है, बहुत कम लोग मिलेंगे। और खास करके आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले बात हुआ था, हमारे देश में बहुत बड़ा विवाद चल रहा था कि राम सेतु के ऊपर है ना, राम सेतु को नींद में दिया जाता है, तो यहाँ की सरकार को भी विश्वास नहीं है कि भगवान राम करके कोई व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकट हुए थे इस धरती पर। तो जब सरकार को ही विश्वास नहीं है तो जनता को क्या विश्वास है? तो ये कलयुग जो है वो बहुत ही विपरीत समय है। आज का जो समय है समाज में तो इतना दुखदायी है, इतना विपरीत समय है कि इसका अगर वर्णन किया जाए तो कई दिन लग सकते हैं। आज समाज की समस्याओं को, समाज में जो दुख कर वातावरण इसका अगर वर्णन किया जाए तो कई घंटों कई दिन लग सकते हैं, कितने समाप्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का समय जब आता है तो इसमें हर तरह के अधर्म और हर तरह के पाप होते हैं, और कलयुग में अधर्म को धर्म माना जाता है और धर्म को अधर्म माना जाता है। सच्चाई जो है वो पैरों के नीचे कुछ ली जाती है और झूठे का बोलबाला, ये कलयुग का धर्म है कलयुग। और आप लोग देखेंगे ये शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ ये शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराणों में वेदों में लिखा हुआ है कि कलयुग में ये समस्याएं आती हैं। और ये पुराण आज नहीं लिखे गए, ये पुराण आज से हजारों वर्ष पहले पर उसने बताया था कि कलयुग में ऐसा ऐसा होता है। अब आपको पूछेंगे कि उनको कैसे पता चला, उनको कैसे पता चला कि आगे क्या होने वाला है? तो ये जैसे मैं अभी किस चीज का मौसम है, कौन सा मौसम है, अभी जाड़े का या सर्दी का, बरसात का, आप लोगों को पता अगला मौसम कौन सा आने वाला है? सर्दी आने वाला है। तो सर्दी में पता है आप लोगों को क्या होता है? कितने लोगों को पता है सर्दी में क्या होता है? ठंड लगती, पर अभी सर्दी आने वाला है, पहले से आपको पता है क्यों? पहले से हमको अनुभव है क्योंकि सर्दी पिछले बार भी आई थी, है ना? हमको पता है पिछले बार क्या हुआ है कि नहीं, तो उसी से हमको पता है कि अब इस बार की जो सर्दी आई उसमें नहीं होगा, क्योंकि सर्दी का मौसम का यही नियम। उसी तरह से जो चार योग हैं सतयोग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये मौसम की तरह आते हैं और जाते हैं। तो द्वापर के लोग जो हैं, इससे पहले क्या था, द्वापर से पहले त्रेता योग था और त्रेता योग से पहले सतयुग और सतयुग से पहले कलयुग था। तो पहले कलयुग आ चुका है, इसलिए ऋषियों को पता है कि कलयुग में क्या हो रहा है। और अभी बार जब कलयुग आएगा तो फिर वही चीज होना, तो इसलिए बताए कलयुग में जो है वो धर्म के जो चार स्तंभ होते हैं, धर्म के चार कौन कौन, सत्य और दया, दया स्तंभ धर्म के स्तंभ, दया और क्षमा, वही दया क्षमा इसलिए, और स्वच्छता, और तपस्या। तो कलयुग में ये चार जो पैर होते हैं धर्म के, उसमें से तीन पैर टूट जाते हैं, तीन पैर टूट जाते हैं, सिर्फ एक पैर बचा रहता है, वो भी लूला लंगड़ा, वो भी आधा टूटा हुआ। वो कौन सा पैर है, सत्य, सत्य एक बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। तो कुछ लोग हैं अभी भी जैसे संत महात्मा है, अभी भी सत्य को पकड़ के चला रहे हैं संसार को, और ये संसार में चल रहा है। ये कुछ, ये जो कुछ अच्छे लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं, सत्यवादी नहीं सत्य का पालन करने वाले लोग हैं, उन्हीं के ऊपर अभी भी जो संसार टिका हुआ है वो टिका हुआ है। अगर इस संसार से सत्य का नाश हो जाए तो उसी दिन इस संसार का विनाश हो जाएगा। जिस दिन इस संसार से संत महात्मा साधु लोग अप्रकट हो जाएंगे ना, उसी दिन इस संसार का विनाश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्रामीण भवति भारत अभिस्था नंबर धर्म से चुनाव। तो परिक्रमा है साधना, साधुओं को बदलने की, और बिना चाहे के दुष्कृता, दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। तो जब इस संसार में दुष्टों का बढ़ावा होता है तो उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार है। तो कई अवतार हो भी चुके हैं और कई अवतार होने भी वाले हैं। तो कलयुग जो है उसके लक्षण क्या क्या होंगे वो पहले से ही पता है। और आज देखिए कि बिल्कुल आप अगर भागवत का अध्ययन करेंगे तो बारहवें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज ने बता रहे हैं कलयुग में क्या क्या होने वाला है। और एज इट इज एकदम टोटल पूरा एकदम वही हो रहा है। तो ये तो आज के समय में लोगों की सुन और झुक झुक कर लोग बिजी भी हैं, लोगों बहुत बिजी, मेरे पास समय नहीं है आध्यात्मिक जीवन के लिए, अच्छे कार्यों के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि बुरे कार्यों में इतना व्यस्त है। तो बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारी चीजें प्रायोरिटी में हैं, पर आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो इसके कारण क्या है कि आप देखें कि कोई दिन प्रतिदिन समाज में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। अब देखिए अगर बोले कि नहीं हम तो विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, न्यूज पेपर में भी आता है, टेलीविजन में भी आता है, बहुत विकास हो रहा है, मीडिया हाई करके रखा है कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत जल्दी भारत विकसित देश होने वाला है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, विकास नहीं हो रहा। आप देखिए चीजों के दाम में विकास हो रहा है, पर नहीं विकास हो रहा है, किसे हो रहा है, चीजों के दाम में विकास हो रहा है, बेरोजगारी में विकास हो रहा है, पर है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, बहुत कुछ बढ़ रहा है। अभी देखिए रिसेशन आया था, कितनी बुरी स्थिति आज की हुई है, ये विकास है। आज का युवा वर्ग इतना असुरक्षित महसूस कर रहा अपने आप को, इतना इतिहास में भारत का युवा कभी असुरक्षित नहीं था जितना आज है। जीवन की जो 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 बेसिक नीड्स है उसके लिए भी इतना सुंदर। एक युवा वर्ग में शायद यहाँ पर बैठे हुए होंगे, वो बता रहे थे मुझे कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं परेशान हो, क्यों क्योंकि जॉब नहीं मिली, इंजीनियर को जॉब नहीं मिली, बाकी तो लोग क्या हाल होगा सोच। और सरकार और मीडिया क्या बताती है, विकास हो रहा है, इसको कहते हैं इल्यूजन, माया। माया का अर्थ क्या है कि हमको लगता है कि ये सही है पर वास्तव में कुछ और सही है, वास्तविकता कुछ और है, हमको कुछ और लग जाए। और ये इल्यूजन कैसे क्रिएट किया गया है पता है आप लोगों को, ये माया का कैसे निर्माण किया गया, मीडिया के द्वारा। मीडिया माया का एजेंट है, मीडिया के रूप में टेलीविजन, सिनेमा घर। कभी जब पहली बार आया था इस धरती पे कुशल परीक्षित महाराज का प्रसंग कर रहे थे, परीक्षित महाराज जो है कभी को पकड़ लिया था, बोला कि तुम्हें मार दूंगा, मेरे राज्य में तुम नहीं आ सकते। तो कभी डर गया क्योंकि महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे, तथा आज तक जैसे राजनेता नहीं थे, अकेले वैदिक कल्चर में राजनेता जो होते थे वो रात को भेद बदल के निकलते थे राजनीति, मुगल गार्डन में बैठे हुए हैं और वहां से डिग्री दे रहे नहीं, खुद निकलते थे रात को भेद बदल के और जाके घर घर के दरवाजे पे कान लगा के सुनते थे अंदर क्या चल रहा है, और कहीं से जगह रोने की आवाज आती थी तो राजा अपने आप को बहुत ही दुखी समझ कर रहे कि मेरे राज में मेरे जनता इतनी दुखी और मैं जी रहा हूं। परीक्षित महाराज भी राज्य भ्रमण के लिए निकले हुए थे, ये कल्पना नहीं है, कल्पना इतना प्रस्तुत नहीं हो सकता। आज से 5-10 वर्ष पहले की इतिहास है भारत का, आप जो आज के इतिहास पढ़ रही है गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, भारत के इतिहास पता ही नहीं। आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं इतिहास अंग्रेजों द्वारा लिखा हुआ इतिहास है, ये भारत का वास्तविक इतिहास है। ये अंग्रेजों ने जब अंग्रेज भारत में आए तो आप जो भी खुदाई और ये सब किए उन्होंने उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि भारत के इतिहास को बदल दिया जाए, फिर हमारे इतिहास को अगर वास्तविक इतिहास का अगर भारत पालन करे तो भारत की कोई कमी नहीं रहे, कोई दुख नहीं रहेगा भारत का। तो भारत को जीतने का उसका एक चाव है, भारत के इतिहास को बदल दिया। और परीक्षित महाराज ये जो शास्त्रों में हमारा इतिहास बताया जैसे वास्तविक इतिहास है हमारा रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो 5000 वर्ष पहले जो परीक्षित महाराज शासन करते थे केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में शासन था परीक्षित महाराज, जो जैसे महाराज 7 तीर्थ के राजा बने लिखा हुआ है महाभारत में, कितने कितने महादेव महादेव में अभी 7 महाभारत लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर महाराज किंग ऑफ सेवेंटी लैंड सात युद्ध के राज्य का जब पांडवों को हटाया सात युद्ध पर कभी जैसे जैसे बड़ा तो ये अलग हो जाता है। जैसे अब भारत नहीं देखे पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सब भारत में थे, है कि नहीं, लेकिन हालत अलग है क्योंकि जो जियोग्राफिकल का बाउंड्री है वो क्या होती है बदलती रहती है। आपको बोलेगा कि मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है लेकिन मथुरा उत्तर प्रदेश नहीं है, मथुरा उत्तर प्रदेश जाने से पहले था, है कि नहीं, उत्तर प्रदेश तो बाद में है, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा कैसे हो सकता है। परीक्षित महाराज के समय मथुरा था, हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ यही करा जाए, फिर हम दिल्ली में जिसका पहले नाम था इंद्रप्रस्थ यहाँ पर आ जाते हैं परीक्षित महाराज। तो ये हमारा इतिहास है। जितने शास्त्रों में स्थान बताए गए हैं सारे स्थान आज भी हैं भारत में। आप देखिए द्वारका, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, उज्जैन, काशी, सब सब आज भी है। यानी पहले काशी राज बता रहे थे, काशी नहीं था पहले, था आज नहीं है। इतिहास है, इतिहास मतलब हमारा भूत जो बीत चुका है, पर हम वास्तविक इतिहास को छोड़ते जो झूठे लोगों द्वारा बनाए गए इतिहास को हम सही इतिहास मानिए और गलत करते जाए और दिमाग तरह से दावे कर रहे हैं और मीडिया विचार के लिए विकास हो। तो परीक्षित महाराज जो राजा थे वो उन्होंने रात में जाते थे देखने, तो जब जा रहे थे तो कलयुग का आगमन होने वाला था उस समय, तो रास्ते में देख लिया कलयुग, क्योंकि सलहन राजा तो थे नहीं आज के दिन, तो किसी को कलयुग नजर नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया। बोला उन्होंने कि क्यों आए हो, यहां से चले जाओ, लेकिन क्या कर रहा था पता है कलयुग क्या कर रहा था, कैसे पकड़ा इन्होंने, वो गायर को राजा के भेज में था, शूद्र वास्तव में शूद्र था मतलब पतित जीव था, पापी था, लेकिन भेद बना रहा किसका, राजा का भेद बना था, और क्या कर रहा था, गाय को मार रहा था। आज के समय में क्या हो रहा है, देखिए राजनीतिक इतने क्रिमिनल थे, वो क्या बन रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर बन रहे हैं, क्यों, कलयुग का लीडर बन रहे हैं, कलयुग जो नेता होंगे जितने डकैत और चोर होंगे सारे नेता होंगे। बताया हुआ है कि जो दस्यु दस्यु होंगे, भागवतम बताता है कि दस्यु होंगे सारे नेता बन जाएंगे, किंग बनेंगे, जिसके डकैत चोर सब राजा के रूप में लोगों को शोषण करेंगे। इतना परफेक्ट बताए हुए सारे किताब को आप पढ़ेंगे, ये हमारा इतिहास। और परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया, बोला तुम मेरे राज्य में आज तक कोई अन्याय नहीं हुआ, तुम कौन हो। उसने बोला कि मैं कलयुग हूं और मेरा समय आ गया है और अब यही होगा। तुम्हारा परीक्षित ने बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उन्होंने अपने धनुष को तीर उठाया और मारने ही मारे, कलयुग डर गया, समय डर गया, ऐसे राजा हो गए भारत में जिसे समय डर सकता है, डर गया कलयुग। फिर उसने चरण पकड़ ली परीक्षित महाराज, इतने सत्य तपस्वी राजा होते थे जिनके आगे समय भी टिक सकता था। सोचिए भारतवर्ष ये इतने ये लीडर करते थे, तो लीडर जो जनता को समय से भी रक्षा कर सकता है, लेकिन समय का प्रभाव था। परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़ा, जो बोला उन्होंने कि आप कि मैं शरण में आया हूं, ठीक है तब तक मैं आपके राज्य में नहीं आऊंगा, जब तक अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, जब तक आप जीवित हो तो मैं इंतजार करूंगा आपके मृत्यु का, लेकिन इंतजार करने के लिए जगह नहीं दिया मुझे, कहां पे रहूंगा, आपके राज्य नहीं रहूंगा कहीं, तो आप राजा हो, आपकी शरण में आया हूं, तो आपको तो जगह देना ही पड़ेगा शरण में, क्योंकि राजा धर्म था, राजा था वैदिक कल्चर में, कोई भी व्यक्ति अगर राजा की शरण में आए तो उसको सुरक्षा करना पड़ेगा। ये देखिए अपने आराम से चारों तरफ कमांडो लगे हुए हैं और इसी कार में बैठे हुए हैं और जनता जो है वो खाने की भी तरस रही है, ये राजा नहीं था। टैक्स निकाल रहे हैं, टैक्स निकाल रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं और आराम से मस्ती कर रहे हैं और जनता जो है दुख में जीवन व्यतीत कर रही है, ये राजा का कर्तव्य नहीं। परीक्षित महाराज ऐसे राजा थे, कलयुग को बोला ठीक है तो चार जगह पे रहने का मैं इंतजाम करता हूं, जहां पे जुआ हो खेला जा रहा हो गैम्बलिंग, जहां पे अवैध स्त्री श्रम या प्रॉस्टिट्यूशन, जहां पे मांसाहार हो रहा हो और जहां पे नशा हुआ, इन चार जगहों से छुपे रहने का मैं अलाउ करता हूं। क्यों? क्योंकि ये चार किए जाए बताए ना, सबके दया सौर और सौर, इन चारों चीजें से रिलेटेड है। जहां पे सत्य नहीं होगा वहां पे ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान मतलब क्या? चीटिंग है ना, तो चीटिंग सत्य का उल्टा क्या है? चीटिंग ना। तो इस तरह से मांसाहार और दया का उल्टा क्या है? मांसाहार। न दया नहीं तो क्या होगा? वायलेंस होगा, चिंता होगा, दया की कमी। तो ये चारों से रिलेटेड है। तो बोला कि चार जवाब से सुधर सकते हैं। कलयुग बहुत चालाक था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि परीक्षित महाराज के राज्य में कोई ऐसा दल नहीं है जहां से नशा पार हो रहा हो, जहां पे गैम्बलिंग हो रहा हो, जहां पे कि लोग अवैध संबंध रखें, ऐसा था ही नहीं कोई जगह। तो बोला आपने जगह बदल दिया, पर ऐसा जगह है ही नहीं। तो मेरा हम पता तो कोई एक और जगह हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम स्वर्ण है, जहां पे स्वर्ण है वहां पे रख सकते हो। तो कलयुग खुश हो गया और परीक्षित महाराज के मुकुट में ज्ञान इंद्रा। और इस तरह से कलयुग ने परीक्षित महाराज को भ्रमित कर दिया। भ्रमित किया तो क्या हुआ? जब भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिकार करने जाने लगे, प्यास लग गई जरूर। जब प्यास लगी तो परीक्षित महाराज जैसे वो खुद ढूंढ रहे थे कहां पे पानी मिले, कहां पानी। तो एक ऋषि थे, समित ऋषि, मैं बता रहा हूं कैसे कैसे कलयुग का आगमन हुआ। शास्त्रों के अनुसार बताया हुआ समित ऋषि, जो ये इतिहास है, ये कल्पना नहीं है, ये इतिहास है हमारा। समित ऋषि तपस्या में थे, उनके आश्रम में पहुंचे और बोले कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो कले उठा ना सीधे, तो राजा अब वो परीक्षित महाराज नहीं थे जो कि पहले, क्योंकि अब कलयुग उनके सिर पर बैठा हुआ है। तो इसलिए जिस राजा ने कभी भी किसी साधु के समक्ष सिर नहीं उठा, उस राजा साधु से गुस्सा हुआ। वो भी वो साधु संत जो कि तपस्या में लीन थे, ये भूल नहीं सकता था, लेकिन ये समय का प्रभाव। तो उससे क्या होगा? गलती होगी। पहली बार जीवन में परीक्षित महाराज ने गलती की कलयुग के संत के कारण। गलत व्यक्ति का संत करेंगे तो क्या होगा? आप भी कितने भी अच्छे हो आप गलत कर जाओ। आप सब यहाँ पे आए हुए हो, सबसे अंदर इच्छा है कि मैं अच्छा बनूं, नहीं सर? तभी तो आप यहाँ आए हुए, तो यहाँ पे क्यों आए हुए? मैंने क्यों बनना? लेकिन जैसे ही आप वापस जाओगे ना अपने घर पे या अपने दोस्तों के कॉल में, कॉलेज में, जब आप संत करके गलत समझते तब आपके अंदर राष्ट्रीय प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी। कोई गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन चूंकि देखते हैं कि सब गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं भी गलत कर। अब सबको पता भी है सही क्या है गलत क्या है, सब पता चलता है। महाराज गुस्से में आके एक सांप जो कि भरा हुआ था वहां पर, उसको उठाया और श्री जी के गले में अपमान कर दिया। संतों का अपमान, इसी से नाश होता है सभ्यता में, जहां पे धर्म का अपमान। क्यों? क्योंकि परित्राण आए साधु महाराज बिना साहित्य के, तो साधु को बचाने के लिए भगवान का अवतार होता है, दूसरों को बचाने के लिए नहीं। तो गलती हो गई, साधु का अपमान, संतों का अपमान, इससे क्या हुआ? उनके जो पुत्र थे, समित ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, आप लोग जैसे यंग थे, उन्होंने ब्राह्मण से, ब्राह्मण को बहुत पाव होता था। आज के जैसे ब्राह्मण नहीं, आज के जैसे कोई ब्राह्मण नहीं, कि ब्राह्मण बच्चा था फिर भी बहुत पावर था, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के नियमों का पालन करते थे और जन्म से ब्राह्मण नहीं बनते थे, कर्म से ब्राह्मण, जिसके अंदर गुण है ब्राह्मण के वही ब्राह्मण बने गए। तो सभी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कुजा को तो दोस्तों ने बताया, अरे तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया राजा ने, ऐसा ऐसा हो गया, कर क्रोध आ गया। और पहली बार ब्राह्मण के कर्तव्य का हनन हुआ इतिहास। एक बच्चे ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, ब्राह्मण की शक्ति का, और क्या हुआ, उसने श्राप दिया कि आपने मेरे पिता का अपमान किया है, तो आप जो आपसे सातवें दिन तक्षक नाम का सर्व आएगा और आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको पता नहीं है कि कौन राजा था, गलती से ये किया कि बिना पता किए कि कौन व्यक्ति है उसने श्राप दे दिया। वो साधारण राजा नहीं थे, परिचित राजा, तो एक्सीडेंटल मिस्टेक हुआ ना। अगर पता किया जाता कौन राजा है, परीक्षित महाराज, तो क्या होगा, वो सस्ता इस बार कह रहे इतने बड़े राजा पति कैसे कर सकते, जरूर कुछ बात होगी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं, पता भी नहीं किया और जिसका सातवें दिन परीक्षित महाराज समय की ऋषि को जब पता चला इस बार तो बहुत ही अफसोस हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बहुत जाना कि तुमको पता है तुमने क्या किया, एक ऐसे राजा का प्रस्ताव किया है जिसके कारण से केवल कलयुग नहीं आ पा रहा है और कलयुग की इस चाल में कलयुग सफल हो गया। फिर सभी ऋषि आया और उन्होंने राजा को बताया, तो राजा ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तो इसने प्रश्न पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु आज से सातवें दिन होने वाले हो, इतना जब मृत्यु इतना नजदीक आ गया, उसे क्या करना चाहिए, जल्दी से अपना LIC फिक्स कर देना चाहिए, है कि नहीं, जल्दी से आजकल पता चल जाए तो लोग पहले से नहीं कराएंगे, है कि ना, अगर कोई टेक्नोलॉजी निकले से पता चल जाएगी आपसे सात दिन के बाद आपको मृत्यु होगी, तो लोग क्या कर देंगे, LIC जस्ट दो तीन दिन पहले कराएंगे, प्रीमियम के लिए देना पड़ेगा, है कि नहीं। पर परीक्षित महाराज ने LIC नहीं है, या शायद वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं बिजनेस बिजनेस का, सब ठीक ठाक हो जाए तब मृत्यु आने वाली है। परीक्षित महाराज ने क्या किया पता है, तुरंत सारा राज्य अपने बेटे को दे दिया, तुरंत इमीडिएटली घर छोड़ दिया। गुरु ने बताया कि तुरंत सुन दो कटक की ओर गवा दे दो, आसक्ति के बंधनों को काटो और सात दिन तक कंटिन्यू भगवान के भक्तों का संग करो, भगवान के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के नामों का कीर्तन करो, उनकी कथाओं का श्रवण करो। तो उसके बाद वो गए सुखदेव गोस्वामी के पास और सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया परीक्षित महाराज, और उन्होंने बताया कि कलयुग में हे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना दो कृष्णस्य मुक्त संग्रह करो, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से सारी दोष कलयुग के जितने पाप हैं जितने दोष हैं सब दूर हो सकते हैं, जितने कष्ट हैं आज समझा संसार में ये सारे कष्ट दूर हो सकते हैं अगर व्यक्ति भगवान के नामों का कीर्तन करे। अब देखिए दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, पर पिछले सात दिनों से बारिश हो रही है लगातार, पता है वो क्यों हो रही है, मानसून नहीं लग रहा, पता क्यों नहीं लग रहा, पिछले सात दिनों से पूरे विश्व में हम मना रहे हैं, कौन मना रहा है, वर्ल्ड होली मेन वीक, विश्व हरिनाम सप्ताह मनाया जा रहा है। विश्व के जितने मंदिर हमारे लगभग 700-800 मंदिर हैं पूरे विश्व में, हर मंदिर के हर एरिया में भगवान नाम भगवान के नामों का कीर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा 24 घंटे की समय है, एक सप्ताह तक हुआ, 11 तारीख को समाप्त हुआ। और भगवान के नामों के प्रभाव से सौंदर्य संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ के प्रभाव से क्या हुआ, पहले जो दिल्ली में बारिश थी उस दिन भी जस्ट उसके पहले दिन हम लोगों ने हरिनाम निकाला था दिल्ली में बड़ा हरिनाम, और जन्माष्टमी के दिन पूरे दो दिन तक बारिश हुई पहली बार। क्यों? क्योंकि भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान के नामों और कीर्तन करने से हमारी सारी समस्याएं। लेकिन उसके लिए पहले भगवान पर विश्वास करना है कि नहीं? आज के समाज में नाम को कीर्तन तो करने की बात दूर है, लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, कीर्तन तो बहुत आगे की बात है कि नहीं? पहले विश्वास तो करें। लोग बोलते हैं भगवान है तो दिखाई भी नहीं। आप देखने के योग्य है क्या? और दिखाई नहीं देता इसका मतलब नहीं, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती इसका मतलब क्या वो नहीं है? तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और पता गया है कि कोई दूसरा उपाय नहीं है, भगवान के समर्पण जब तक नहीं करेंगे इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। अब बताइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करेगा अगर बारिश नहीं होगी? क्या आप बारिश करा सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट होता है जब बारिश हो जाती है, उसके बाद वहां से स्टार्ट होता है। अब उस पानी को आप वाटर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी तो आपका जल बोर्ड क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी टेक्नोलॉजी भगवान की टेक्नोलॉजी के बाद शुरू होती है, और भगवान चाहेंगे अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी बंद कर दिए हमारी टेक्नोलॉजी इजी रह सकती है। आज आज के कार्य है तो कौन सी टेक्नोलॉजी काम देगी? दिल्ली हॉस्पिटल बन जाता है कि नहीं? अगर आज दिल्ली हॉस्पिटल आ जाए कौन सा मिलिट्री फोर्स आपको बचाएगा? पाप बढ़ते जा रहा है, इसलिए भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे। और कहा है मीडिया ने बता रखा है, फिर से आगे हमारे कहते हैं मीडिया, मीडिया बताती है नहीं नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, डोंट वरी। आज तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है मीडिया? क्राइम बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोग नए नए बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं जिसकी कोई दवाई नहीं, परेशान है सर। अन्न का उत्पादन घट रहा है, चीजों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मांग ज्यादा, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तभी तो दाम बढ़ रहे हैं। और कहीं बढ़ेगी सिर्फ उन जाने की जरूरत है, फूड क्राइसिस आने वाला है, ऑयल क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, कितने क्राइसिस पड़े हुए हैं रास्ते में आने वाले हैं बहुत जल्दी। क्यों आ रहा है तो कभी सोचना चाहिए ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग पाप कर रहे हैं, भगवान को अपने जीवन से हटा रहे हैं। और आज अगर मान लीजिए कि ये फूड क्राइसिस आ गया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और अन्न उत्पादन अगर बंद हो जाए तो आपका टेक्नोलॉजी क्या चावल पैदा करेगा अगले महीने? लेबोरेटरी में क्या आप चावल बना सकते हैं? क्या आप पानी पैदा कर सकते हैं? कितना पानी पैदा कर सकते हैं? और पानी के आप आकाश में भेजेंगे पंप से, आकाश में भेज के पूरा दिल्ली पे पानी बनते हैं। कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो सकती अगर भगवान न करे तो, कितना जीना मुश्किल हो जाएगा, संभव ही नहीं है भगवान की इच्छा के बिना जीना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इलेक्टर है, माया है, ये लोगों को इतना पागल बना चुका है कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भगवान को भगवान की कृपा प्राप्त न हुआ तो ये मानने या न मानने की बात नहीं है, ये बात देखता है। आप बोलोगे नहीं मैं नहीं मानता, आपके नहीं मानने से क्या सत्य झूठा हो जाए? सत्य ट्रूथ डज नॉट डिपेंड ऑन योर बिलीफ, ट्रूथ इज ट्रूथ विदर यू बिलीव और नॉट। आपका नाम क्या है? सोफी। आई डोंट बिलीव दैट इन सोफी। हमारे कभी विश्वास करने से वो सोफी नहीं होंगे? नहीं, मैं विश्वास करूं या ना करूं वो तो है। अगर नहीं मैंने विश्वास करता तो क्या वो नहीं रहेंगे? नहीं, भगवान का अस्तित्व हमारे विश्वास के ऊपर नहीं आधारित है। भगवान है, अगर आप मानेंगे आपको फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो आपका भगवान का कुछ नहीं होने वाला है। कितने राम और कृष्ण सचिव को आए और चले गए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए होगा। वो कृष्ण सचिव ने क्या बोला? वेल गॉड आई एम गॉड, बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया। पता है आपको किरण कश्यप की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कि आप कुछ नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी शास्त्रों में लिखा हुआ भारत में किरण कश्यप के बारे में। किरण कश्यप नेचर को इतना कंट्रोल कर चुका था, आज भी विज्ञान क्या कर रहा है, नेचर को कंट्रोल कर रहा है। किरण कश्यप के ऊपर इतना कंट्रोल था उसके नेचर के ऊपर कि आम के दिनों गर्मी के दिनों में जो फल जाड़े में होते उसको उगा देता था, आम के पेड़ से सेव निकालता था तो ईशा बना सकते, और बारिश के दिनों में गर्मी हो जाती थी सूखा हो जाता था, और सूखे के दिनों में बारिश करा देता था ईशा बना था। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी लिखा हुआ था, और पर उसने क्या किया? सब कुछ तो सहन हो गया, इतना उसने अत्याचार किया, लेकिन जब भक्त प्रहलाद से अत्याचार किया तो भगवान को बजा था। भगवान कब मारे उसको? जब उसने भक्त का अपमान किया। तो इसलिए बताता हूं कि हिरण्यकशिप राम, हिरण्यकशिप पता है कितना बलवान था? हिरण्यकशिप इतना बलवान था, बताया जाता है कि रावण से हजार गुना बलवान था। रावण जब भगवान राम अवतार लिए, सत्ययुग की घटना है, मैंने कहा कि वो भी इस सत्ययुग की नहीं, बहुत पहले की दूसरे मनमंत्र के सत्ययुग की घटना है। हिरण्यकशिप जब भगवान राम पर प्रकट हुए और रावण को जब अटैक किए तो उसके सारे लोग मारे जा चुके थे, रावण केवल रावण को बन रखे थे, तो रावण असहाय हो गया। तो वो बड़ा सुतल प्लैनेट है, सुतल लोक है, जो कि जिसको कि लोक प्रवृत्ति सिस्टम में सुतल लोक अभी भी है, दिस इज अनदर डायमेंशन, जिसको कि आपके विज्ञान को पता नहीं। ब्रह्मांड की रचना जो है, ब्रह्मांड का वास्तविक स्ट्रक्चर है, हमको साइंस को नहीं पता है, क्योंकि दूरबीन सब कितना देखता है, सटल डायमेंशन दूसरे डायमेंशन है जो कि हम नहीं देख पाएंगे अपनी आंखों द्वारा। हम इन आंखों से बहुत ऐसे डायमेंशन जो कि हम नहीं देख पाएंगे, हम बोलते हैं कि नहीं हम, क्योंकि हम नहीं देख रहे इस स्टेज को, ठीक ही नहीं। तो कोई अंधा है जिसका मतलब उसके लिए ये ट्यूबलाइट और प्रोजेक्टर सब नहीं है, है कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति अंधा है उसके लिए तो ये सब नहीं है क्योंकि देख नहीं सकता, पर वास्तव में ये है या नहीं? तो फिर वो क्यों नहीं देख पा रहा है? किसकी कमी है? तो उसकी कमी है, चीज की कमी थोड़ा है। और बोले नहीं क्योंकि मैं नहीं देख सकता, इसमें ये चीज है ही नहीं, आप मुझे पहले दिखाओ फिर मैं विश्वास करूंगा। तो हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमको फैसिलिटी दी गई। आप एक भी चीज ज्यादा नहीं देख सकते। अगर किसी को कार नहीं है तो वो कैसे बताएगा, कितना भी आप प्रयास करो। तो जो भगवान ने फैसिलिटी दिया है उतना ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? अब मान लीजिए आप यहीं बैठे हुए, अगर आप एक और चेंज दे देते, इंद्रिय दे देते, एक और चेंज, तो आप क्या करोगे? यहीं बैठे बैठे आप एक और डायमेंशन का अनुभव कर सकते, कर सकते कि नहीं? सिक्स सेंस अगर मिल जाए तो क्या करोगे? वो सेंस अपना कार्य करेंगे। तो यहीं बैठे बैठे उसको कनेक्ट कर दीजिए माइंड से, तो क्या होगा? यहीं बैठे बैठे आप यू कैन परसीव अनदर डायमेंशन। और अगर कुछ और एक दोस्त मिल जाए तो आप और भी मतलब देख सकते हैं। यही बैठे बैठे हियर ऑन हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ अगर कोई चीटी जा रही है उसको समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं? उसको पता भी नहीं कितने लोग बैठे हुए हैं, पता है चीटी को? नहीं पता है, नहीं तो भागी नहीं कहीं, पैसा बोल जाए। आप देखा है आपने चीटियों को डरते हुए आपसे नहीं डरती है, आप वहीं पे खड़े हो बगल में घूम रहे पैर के नीचे और थोड़ा सा पैर में आ के खत्म, उनको पता नहीं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं खड़ा है देखा हम। अकबर मुझे लाइफ से प्रॉब्लम है पर उनको पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको फैसिलिटी उनको नहीं मिली। उसी तरह से हमको भी पूरी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका कि हमको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। बहुत सारे श्रोता यहीं से हैं, हायर निगेटिव बट वी कैन नॉट सकते, जैसे हम किसी के समझे उनके सामने। ये अनुभवी बात नहीं बता रहा हूँ और ये सब थे। तो सुतर प्लैनेट में रावण गया कि वहां पर बलि महाराज, बलि महाराज विरोधन करते के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोधन के पुत्र थे बलि। तो बलि महाराज सुतर प्लैनेट में बहुत प्रॉब्लम, तो गया उनसे हेल्प मांगने के लिए, चलिए आप हेल्प कर दीजिए, राम ने के साथ पराजय हो रहा है तो आप तीन राक्षस हैं, फिर राक्षस खनन से। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है, पर उससे पहले आपको मैं चीज दिखाने वाला हूँ, उसके बाद हम आप डिसाइड कीजिए। तो ले गए वहां पे एक घर में बहुत बड़ा कुंडल रखा हुआ है, कुंडल में कान में बंद है। तो रावण ने बोला ये क्या है? बलि महाराज बोले मैं बाद में बता दूंगा कि ये क्या है, बलि आप इसको थोड़ा हिला दीजिए। तो रावण ने हिलाने का प्रयास किया तो हिला नहीं कान का कुंडल। रावण ने बोला ये है क्या इतना भारी? तो बोला ये कुंडल है जो मेरे परदादा अभिवर्ति कर दो पान कर दे। और वो परदादा अभिवर्ति कर दो थे, इतने बलवान थे, निकाल कर कुंडल आप नहीं ला पाए उसको, इसी विष्णु ने बिना शस्त्र के मार दिया था एक सेकेंड में। अब आप समझ लो क्या करना है। हिरण्य कश्यप इतना बलवान था, काल का उद्धार था उसके सामने, सबको हरा कर बांध चुका, लेकिन वो भी नहीं टिक पाया। राम, राम भी बलवान था, वो भी क्या कर सकते, बोलते तो भगवान नहीं मैं भगवान हूं जैसे आज कल के लोग, लेकिन भगवान तो थे क्या? हिरण्य कश्यप के कारण भगवान नहीं रहेंगे, नहीं मरने से भगवान नहीं रहेंगे, भगवान है और भगवान रहेंगे और भगवान थे बलि। हमारे मानने से हमें फायदा होगा, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारा लेकिन हो रहा था, लेकिन क्या होता था, नहीं बोलते नहीं, वैज्ञानिक नहीं मानते, वैज्ञानिक नहीं मानते थे इसीलिए मरते, सब मर रहे हैं और इतने कष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक नहीं मानते, बहुत सारे वैज्ञानिक मानते थे, बहुत सारे वैज्ञानिक, जैसे आपको दिखाऊंगा कुछ स्टेटमेंट, कुछ वैज्ञानिक स्टेटमेंट दिखाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए ये क्या है, सुंदर है कि नहीं, आप जैसे कोई पेंटिंग करता है, पेंटिंग यानी बड़ी बड़ी पेंटर मैच पिक्चर, कोई नहीं देखिए आप एक पिक्चर ही पेंट नहीं कर सकते, तो इस फूल को पेंट करने के लिए बुद्धि की जरूरत है कि नहीं, बुद्धि चाहिए। किसने बनाया है इतना सुंदर रंग भी है और सुगंध भी है, सुगंध किसने का है? आप सब लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, कभी आपने सोचा है कि ये कहां से आता है, कहां से आता है? ये कैसे पैदा होता है, क्या वैज्ञानिक पैदा करते हैं, कौन पैदा करते हैं? भगवान करते हैं, भगवान ने प्रोग्रामिंग की है, कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग। आप एक चावल का दाना डालो और हजार चावल के दाने निकलेंगे, जमीन उसी की उतनी ही रहती है काटने के बाद, है? कितना परसेंट रिटर्न है इन्वेस्टमेंट से? और कोई लॉस नहीं, भगवान ने जमीन दे रखा है, भगवान ने बीज दे रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, डाल देना और अपने आप निकलेगा। पानी भी दे रखा है, हवा भी दे रखा है, सन भी दे रखा है, लाइट भी दे रखा है, तो देखिए कितना आश्चर्य है। अब जो मिरेकल, मिरेकल तो हर जगह हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे, हर जगह मिरेकल हो रहा है आपके लिए। वो कभी आपने सोचा है जितना जमीन है वो जमीन उतना का उतना ही रहता है, हजारों वर्षों से उससे अनाज निकाल रहे हैं, जमीन में कोई कमी नहीं होती, कहां से आ रहा है? हजारों टन उस खेत से हजारों टन अनाज निकाला जा चुका है, खेत उतना का उतना ही है, फिर ये अनाज कहां से आ रहा है? ये कौन सी टेक्निक है? और उसको अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक और उसको कॉपी करते हैं तो बोलते हैं मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। जो वो करते हैं बोलते हैं मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, और जो भगवान करते हैं बोलते हैं ये पहचान हो रहा है। कितने चला है ना, मान लीजिए कि दो आदमी परीक्षा दे रहे साथ में बैठ के, ठीक है ना? आप और आपका नाम गौरव, और आपका सौमी, सोमेंद्र, सोभित, सोभित और गौरव, तो सोभित इंटेलिजेंट है ना, उनको सारा याद है, वो लिख रहे हैं और आप उनका कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? कॉपी करने वाले को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, जो ओरिजिनल लिख रहा है उसको ज्यादा महत्व, तो कॉपी करने वाले को अगर नोबेल प्राइज दे रहे हैं तो उनको क्या देना चाहिए? इनको गौरव कॉपी कर रहे हैं इनको नोबेल प्राइज दे दिया, तो वो जो ओरिजिनल जो लोग लिखा जिसको कॉपी किया उसको कौन सा प्राइज मिलना चाहिए? भगवान जो है ओरिजिनल लिख रहे हैं, जितनी सारी विज्ञान खोज कर रहा है वो तो हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, इसका सिद्धांत कहाँ से है, किसने बनाया इस दुनिया को? न्यूटन तो निर्गत हो गया लेकिन नियम सिस्टम न्यूटन से पहले ही था, ये निगम विजन दिया तो विजय ही दिया था, इतनी मुझे है कि नहीं? तो न्यूटन जब जन्म दिया तो उसमें था है कि नहीं? तो नियम किसने वो नियम बनाए किसने? एक ही न्यूटन से पहले सारे थे ऊपर जाते थे और न्यूटन आया तो देखा नीचे की तरफ नहीं, हमेशा से नीचे ही मिलती थी। पर न्यूटन ने क्या किया, इसका बन गया और उसके लोग तो इतने बड़े प्राइज मिले, इतना नाम हो गया। तो जिसने नियम को बनाया उसको कितना बड़ा प्राइज मिलना चाहिए, उसको कोई कुछ नहीं, कोई थोड़ा भी कटे भी नहीं है लोगों में कि थैंक यू बोला जाए कटे। आपको अगर कोई एक पेन ला के देता तो आप क्या करोगे? बोलो तो थैंक यू। और भगवान आपको खाने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है आपको जीने के लिए? ऑक्सीजन। हाँ, और सबसे सस्ता चीज क्या आपके लिए अवेलेबल मिल रहा है? सबसे सस्ता मिल रहा है पैसा नहीं, मान लीजिए लेना भूल गए थे छूट गया था होटल में, भगवान को पता है कि ये बहुत जरूरी है इसलिए 24 घंटे सप्लाई नाक के लिए है कि नहीं? तो क्या एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी है कि नहीं? ये टेक्नोलॉजी है लेकिन हमें जो भी फ्री में मिल रहा है इसलिए कहते हैं जो फ्री में मिलता है उसका वैल्यू नहीं होता। और जो एडवर्टाइजमेंट करके दिया जाए हाँ ये बहुत अच्छा हो, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कोका कोला 7 पैसे का 12 रुपये बेच रहे हैं, सब खरीद रहे हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो कोई बता रहे तो 7 पैसे का 12 नो प्रॉब्लम, अब आपके भगवान को कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे। अब हरे कृष्ण मोमेंट में आप यहाँ आए हो तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है आपके भगवान का है कि नहीं? केवल क्योंकि कलयुग में संत महात्माओं की कमी है और जो है भी वो अपने एडवर्टाइज करते, भगवान को कोई एडवर्टाइज नहीं करते। फिर यहाँ से सब या तो विज्ञान को एडवर्टाइज करते हैं या अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, सब चोर है। भगवान का खाते हैं और भगवान का ही अपमान करते हैं, इसीलिए सड़ रहे हैं, दूर हो रहा है और होता रहेगा, तड़पते रहेंगे जब तक हम भगवान को शरण नहीं देंगे, भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। एक पेज होता है जब आप उसको थैंक यू बोलते हो और भगवान इतना भूल दे रहे हैं क्या कर देंगे, शरण पकड़ना चाहिए नहीं? तो हम क्यों नहीं करते थे? क्या दिक्कत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको समस्या क्या है? भगवान का भक्ति करने में समस्या क्या है? आपको भगवान बोलते हैं कि आप मेरे नामों का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, भगवान बोलते हैं करना, अब क्या दिक्कत है? क्या कोई पैसा लग रहा है? मंत्र फ्री में और जीव भी फ्री में और ताकत जब करने के लिए भी फ्री में, तो आप क्यों नहीं करते? सब कुछ फ्री में है तो क्यों नहीं करते? क्या नहीं करते? इतना कुछ दे रहे हैं भगवान, इतनी व्यवस्था कर रखी है, क्यों नहीं करते? इसलिए कि करना नहीं चाहते, मूर्ख है, अपने पैरों को खुद लड़ी मारते हैं, खुद ही वो जो उसको बुलाओ देते हैं, इतना साधारण से नहीं सकते। हाँ, 12 घंटे 10 घंटे रिसर्च करेंगे, रिसर्च क्यों करते हैं, सर्च क्यों नहीं करते, क्यों रिसर्च? पहले ही सर्च हो चुका है, अब दोबारा करेंगे, कब तक करेंगे आप? उसके लिए इतना टाइम है, लेकिन जो सब कुछ दे रहा है वो कुछ नहीं दे रहा, और दुख ही दुख बढ़ते जा रहा है टेक्नोलॉजी का। आप देखिए आज टेक्नोलॉजी का कितनी समस्या बढ़ गई, कार समस्या बढ़ गई, इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम, नए नए फ्लाई ओवर रोड बनाए जा रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, क्यों? टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम बढ़ गई, क्यों? टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, हमारे कारण, क्योंकि हम जानते नहीं टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यही लैपटॉप हम यूज करते हैं, यही लैपटॉप और टेक्नोलॉजी का ज्यादा गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इतने सारे बॉम्ब बना रखे हैं पर बॉम्ब चलाता कौन है? पुलिस साहब ने देखा किसी को बॉम्ब देखते हुए, टेररिस्ट को बॉम्ब फेंक दिया पुलिस ने, कौन बॉम्ब फेंकता है? टेररिस्ट फेंकते हैं पुलिस को, अब बना किस लिए था? टेररिस्ट को मारने के लिए, गलत गलत को मारने के लिए, पर इस्तेमाल कौन करता है? तो इस तरह से ये चल रहा है, तो हर चीज ऐसी चीज थी ये उसका क्या होता है, दुरुपयोग होता है, क्यों? क्योंकि सब टीचर्स है, कोई सब पाप ईश्वर से पाप कर अपने स्वार्थ के लिए भगवान को हटा रहे हैं, दूसरे के पास तो भगवान से नहीं हो तो आपका मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा? जो भगवान इतना कर रहे हैं जिसके लिए उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको थैंक यू नहीं बोलता है तो दूसरे का क्या होगा? इसलिए बता रहा हूं कि हम सबको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास की बात है। और भगवान विश्वास नहीं करना चाहते हैं ना, उसको और भी प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं नहीं हूं, ये वैज्ञानिकों को कौन बुद्धि दे रहा है कि भगवान नहीं है? भगवान है, भगवान बोलते ये काम आम तौर पर करते काम दूसरे हो जाए, आप अगर चाहोगे कि प्रूफ करना कि मैं नहीं हूं तो आपको नहीं बुद्धि दूंगा जिसे आप प्रूफ कर दो कि हाँ मैं नहीं हूं, तो भगवान बुद्धि देते हैं हाँ तुम नहीं हो, क्यों? क्योंकि बुद्धि किसने बनाया है? वैज्ञानिक ने क्या अपनी बुद्धि खुद बनाई? जन्म लेने के बाद थोड़ा देर बैठ के बुद्धि बनाया आपने, ये रिसर्च फिर किया, किसने बुद्धि बनाई? वही भगवान बुद्धि देते हैं, नमस्ते है नृत्य विज्ञान हम अपोह हम नमस्ते बुद्धि आती बुद्धि आती है, तो जबरदस्ती नहीं करेगी कि मुझे विश्वास करो ही एकदम आ दूंगा, प्रेम के बुद्धि आप नहीं करोगे भगवान के विश्वास, भगवान बोले ठीक है मत करो, पर अगर आप करेंगे भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, देखो हाँ मैं कहा हूं और साधारण बात है। कृष्ण जब धरती पे थे तो अर्जुन भी देखता था और दुर्योधन भी देखता था, अंतर क्या है? दुर्योधन ये कभी नहीं मानता कि ये भगवान है, विश्व रूप दिखाया जाके शांति का संदेश लेके जब गए थे भगवान, तो उन्होंने क्या किया? अपना विश्व रूप दिखाया निद्राज के सभा में कि देखो मैं कौन हूं, तुम मुझे बांधना चाहते हो, देखो मैं कौन हूं, फिर भी इतनी बुद्धि खराब हो गई थी नहीं समझे, क्यों? क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं करना चाहोगे तो भगवान भी आपको सहायता नहीं कर सकते, इसलिए शुरुआत कहां से की है? विश्वास द्वारा की, ये फर्स्ट स्टेप आपको लेना ही है, इसको अगर मैंने कोई नहीं कर सकता उसके बाद से भगवान आपको सहायता करेगा, लेकिन आप भगवान से विमुख होके आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठोगे भगवान आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। भगवान कहे किसी से जबरदस्ती नहीं करते, एक्सप्लॉइट नहीं करते। प्रेम पर मैं तो बड़ी मानती हूँ, इसीलिए प्रेम क्या होता है कि नहीं, इट इज नॉट लव। लव का मतलब अपनी स्पेशल से आप करोगे। तो इसी तरह से भगवान भी चाहते हैं कि हम सब अपनी स्वेच्छा से उनको प्रेम करें। अगर हम स्वेच्छा से प्रेम नहीं करेंगे तो फिर हमारा अपना ही नुकसान है। और भगवान देंगे खाने के लिए, रहने के लिए सब दे रहे हैं, लेकिन हाँ अब देखिए हम अपना ही नुकसान करेंगे। भगवान नहीं होंगे, आज देखिए क्या हो रहे थे, भगवान ने इतना सुंदर पृथ्वी दिया, नरक बना दिया उसको, आज नाक से सांस भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए, सब कुछ सुंदर बनाया था भगवान, लेकिन किसने खराब किया? पागल मनुष्य, मनुष्य नहीं पागल, पागल हो गए। कहते हैं जिस जाली में बैठे उसी को काट गया है, तो जिस जाली में बैठे उसी को काट गए हैं। और बोलते हैं बहुत बुद्धिमान, जिस हवा को उससे जी रहे हैं उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भरे जा रहे हैं, तो बोलते हैं यार एक बात थी। जिस पानी को फिर आप जाए देखिए जमुना की स्थिति क्या है, इसी में वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जमुना दूषित हो गई। जिस पानी को पीते हैं उसी पानी में सारा गार्बेज आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट है, इसी को कहते हैं जिस जाली में बैठे उसी को काट रहे। तो कटेगा तो उसके बाद क्या होगा? ये कालिदास, कालिदास का नाम सुना होगा आपने, मूर्ख इसको बोलते हैं, कालिदास को मूर्ख की कथा नहीं मारा। तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि मूर्ख किसको बोलते हैं मूर्ख, तो प्रभुपाद ने बोला था कालिदास का उदाहरण देंगे। एक बार कालिदास बैठा था, जिस पेड़ पे बैठा था जाली पे उसी को काटा था। एक साधु जा रहे थे रास्ते से, तो बोले कालिदास क्या कर रहे हो? तो कालिदास ने बोला दिखाई दे रास्ते हो क्या, दिख नहीं रहा उस पेड़ की डाली काट रहा हूँ, डाली में रोक देख रहा हूँ मैं, पर तुम अगर काटोगे तो तुम गिर जाओगे नीचे और गिरोगे तो चोट लगेगा, मर भी सकते हो। बोला तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला तुम जैसे ही कटेगा तुम गिरोगे और फिर मर जाओगे। बोला क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है कि मैं मर जाऊंगा? हम रिसर्च कर रहे हैं। इसी को कहते हैं मूर्खता। जिस पे हम जी रहे हैं उसी को नुकसान होता है। टेक्नोलॉजी 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 खाली की ज्ञान नहीं है, अनाज की कमी पड़ रही है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पूरे मीडिया में चार हुआ, टेलीविजन फ्री एसी है, ये वो भी क्या मूवी खाएंगे, इतनी बॉलीवुड हॉलीवुड बैलीवुड और सब क्या खाना देगा आपको? माइक्रोसॉफ्ट चिप्स थोड़ा ना खाएंगे आप, वो टैटो चिप्स भी खाना पड़ेगा। तो हम जो कि जरूरी नहीं है उससे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और जो चीज में जरूरी है उसको बिल्कुल किनारे। इसको कहते हैं राक्षसों की सभ्यता। और राक्षसों की सभ्यता की शुरुआत कहां से होती है? भगवान को जब आप हटा देंगे अपने सभ्यता से तो क्या हो जाएगी? आपसे ही सभ्यता। तो राम राज्य चाहते हैं, गांधी जी ने बोला था कि हमें राम राज्य की जरूरत है, लेकिन राम नहीं चाहते हैं। राजा का राज्य चाहते तो राजा नहीं चाहते, संभव है क्या? बिना राजा के राज्य संभव है? किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, ये दीवार किंगडम ऑफ गॉड विदाउट पॉसिबल है तो किंगडम ऑफ गॉड आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, सब आ जाएगा. हमें क्या करना है? भगवान को चाहिए, भगवान को अपने जीवन में चाहिए. और कोई रास्ता करना है? कुछ नहीं करना है. आपको रेगुलर आना है, कोई संडे को आइए जब भी समय मिले. ये प्रोग्राम अटेंड कीजिए और हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे. तो जो स्टूडेंट है पढ़ाई की थी लेकिन भगवान को धन्यवाद कि बुद्धि दिया है जिसे पढ़ाई कर पा रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं धन्यवाद दीजिए. और हर कैसे धन्यवाद देंगे? हरे कृष्ण महामंत्र कर धन्यवाद देंगे. लेकिन ये मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट. क्या आपको क्या करना है? इच्छा करना है. इच्छा करने में पैसा लगता है? लेकिन इच्छा करने में पैसा नहीं है. गलत चीज की आप इच्छा करोगे तो उसमें पैसा भी लगता है, लेकिन भगवान की इच्छा करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलता. तो पैसा पी के जहर पी रहे हैं, पैसा दे के जहर पी रहे हैं, इधर क्या है? जहर ही है ना. और उसके लिए पैसा दे रहे, जो पैसा लोग मैं जहर दो मैं पीऊंगा. लिखा हो चुकी थी स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ. तो जहर ही है ना, जहर एक ही बार मार देता है इस पर दिल देने वाले का. तो इसलिए बता रहे हैं कि भगवान को अगर हम जीवन में लाने के लिए कोई विभिन्न सिचुएशन है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है. फिर क्यों नहीं करते? विभिन्न सिचुएशन तो कभी इतना हार नहीं, लॉस नहीं होता, कभी गेन नहीं, कोई घाटा नहीं है ना. क्यों हम सब करते हैं आध्यात्मिकता का पाठ. और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारी आशा है कि आप आते रहिए क्योंकि हमें जरूरत है इसकी. कोई और चीज नहीं बता सकता हमें. अगर इस संसार को बर्बादी से कोई बचा सकता है तो भगवान. और भगवान के बाद आप सब बहुत खोलने से ही हम केवल पाएंगे. तो भगवान को विश्वास बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी किया है कि देखिए इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई है भगवान ने, इतने बड़ा बढ़िया है बरगद का पेड़ छोटे से बीज में डाल दिया. बीज के साइज कितना होता है? इतना बड़ा पेड़ है. कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? नैनो टेक्नोलॉजी. अगेन ये देखिए पेंटिंग बनाया के लिए अवार्ड मिला इनको. अभी नहीं ये पेंटिंग किसने बनाया? इसके लिए अवार्ड की जरूरत नहीं है. ज्यादा सुंदर है तो कौन है आर्टिस्ट? भगवान है. एक सैटेलाइट भेजते हैं, बोलते हैं बहुत बड़ा रिसर्च कर दिया, 700 करोड़ रुपए लगा के चंद्रयान दे दिया. और खुद वहां जाकर वहां से धूल लेके आते हैं, पत्थर लेके आए हैं चंद्रमा से. यहाँ तो पत्थर की कमी है, हम कह रहे हैं कितना पत्थर यहीं पे. आप 400 करोड़ नहीं, हमको 2 करोड़ चाहिए है कि नहीं? अब चंद्रमा को जाके क्या कर दे, वहां से पत्थर लेके आएंगे, फिर उससे रिसर्च करेंगे और 400 करोड़ लगाएंगे. उसके बाद फिर पता करेंगे वो भी होगा कि नहीं होगा. लेकिन लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा और इतना पैसा लगा के चंद्रमा को जा रहा है. धरती को दिया भगवान ने तो नरक बना दिया, चंद्रमा को जा रहे हैं तो नरक बना दिया. इतनी सुंदर धरती थी और उसको क्या किया? नरक बना दिया. अब जा रहे हैं चंद्रमा को छोड़ेंगे नहीं. तो देखिए कंट्रोल रूम एक सैटेलाइट भेजते हैं, उसने इतना बड़ा काम किया तो भगवान ने इतने सारे सैटेलाइट भेज रखे. देखिए किसी सैटेलाइट है कि नहीं? इतने दिनों में घूम गए, देखिए इतना भारी है. पृथ्वी का वजन 6×10^21 टन और इसके स्पीड देखिए 106,000 किलोमीटर पर आवर, इतना बड़ा सेकंड है, कितना स्पीड है पृथ्वी, उस पर आराम से बैठ के और मुझे डिस्टेंस देख रहे हैं। एक सैटेलाइट है, एरोप्लेन है ना, ये इतना तेजी से चल रहा है, एक घंटे में कितना किलोमीटर, 1,06,000। भारत की लंबाई कितनी है, 3,314 किलोमीटर, तो उसका कितना गुना है, ये 30 गुना 30-40 गुना ज्यादा स्पीड एक घंटे में। एक्चुअली पृथ्वी का पूरा चक्कर आप एक घंटे में लगा सकते हैं, पृथ्वी से पृथ्वी से जाएगी पृथ्वी का इतनी तेज से चल रही है वो मशीन, वो गाड़ी इतनी तेजी से चल रही है, आप उसे बैठ के आराम से सोचे, और ये गाड़ी बाई चांस चल रही है बोल रहे, तो बाई चांस अगर लड़ गया तो क्या होगा, आप सब गए वैज्ञानिकों के लैंग्वेज में या आधार्मिक लोगों के लैंग्वेज में ये बाई चांस हो रहा है, तो ये गाड़ी बाई चांस चल रही है जिससे आप सब बैठे हो, तो बाई चांस अगर बंद हो गई तो क्या होगा, एक बाईचांस कुछ नहीं होता है, बाईचांस नहीं है, है कि नहीं, सूर्य जो है बाईचांस थोड़ा नहीं होता है, सूर्य जो है रोज सुबह उठता है कि नहीं, ये नहीं कि बाईचांस किसी दिन 12 बजे सूर्यास्त हो गया, नहीं, हर रोज सुबह ही उठता है और शाम में ही अस्त होता है कि नहीं, कोई बाई चांस नहीं है, दूसरा चांस नहीं है, तो फिर बाई चांस कैसे हो गया, ये तो लॉ है ना, इज लॉ, लॉ ऑफ चांस, लॉ चांस कैसे हो सकता है, नियम जो है चांस से थोड़ा ना बनता है, आप जाओ ट्रैफिक रेड लाइट पे जाओ देखो नियम लगा हुआ, तो कैसे अपने आप बन गया बाई चांस, किसी ने बनाया होगा ना नियम, तो इसे ग्रेविटेशन लॉ, आप बोलते लॉ है तो लॉ में किसी ने बनाया होगा, कोई लॉ मेकर होगा, तो कितने कौन लॉ मेकर है, भगवान है, इतने सारे ग्रहों को घुमा रहे हैं, बहुत कमजोर है भगवान, इसीलिए अगर बहुत सारे वैज्ञानिक जो बुद्धिमान वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं इस बात को कि, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के उदाहरण में दिखाऊंगा आप लोगों को, देखिए आइंस्टीन विश्व के सबसे फेमस वैज्ञानिक हो गया, जैसे परफेक्ट ब्रेक बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉ, वैज्ञानिक कैन बिलीव इन गॉड, इस बिलीव, ये हरे कृष्ण का टीवीकरण है, देख तो नहीं है, कोई तिलक नहीं है, कोई हम सोती कुत्ता नहीं है, कौन नहीं है, फिर वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ये बिलीव इन गॉड, नहीं बिलीव के स्ट्रॉन्ग इनफ एनफ कि बिफोर वैज्ञानिक टू बिलीव इन गॉड कैन बिलीव। न्यूटन दिस मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द सन प्लैनेट एंड कॉमेट को लाने पर से अब काउंसिल एंड डोमिनियन ऑफ एन इंटेलिजेंट पावर ऑफ इंडियन प्लीज दिस गवर्नमेंट ऑल थिंग्स नॉट द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड आई नॉट ओवर ऑन काउंट ऑफ इंडियन पीपल कॉल पावर न्यूटन ही मान दें हैं और कितना देखेंगे आप बताइए हैं कई साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं जिनकी भगवान के ऊपर किताब लिख चुके हैं बहुत सारी किताबें लिखी गई है प्रूफ किया गया है साइंटिफिकली कि गॉड एग्जिस्ट आप लोग चाहेंगे तो नाम दे सकता हूँ तो पढ़ी होगी किताब वैज्ञानिकों ने लिखी है तो हम क्या पढ़ते हैं उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं जो प्रूफ करते हैं कि गॉड डजंट एग्जिस्ट तो दोनों तरह की चीजें हैं इस संसार में आप अगर पढ़ना चाहोगे कि नहीं गॉड डजंट एग्जिस्ट तो भगवान हो भी नहीं और आप पढ़ना चाहोगे कि गॉड एग्जिस्ट तो भगवान हो भी नहीं सही हमारे ऊपर है कि नहीं जैसे आप अच्छा करना चाहोगे तो उसके लिए भी चाहिए तो बुरा करना चाहोगे उसके लिए भी चाहिए चॉइस होने का नहीं भगवान ने कहा पहले व्यवस्था कर रखी हम आपको समझना है आपको क्या करना है ठीक है तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे यही बताना चाहेंगे तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भगवान है तो हरे कृष्ण यहाँ से हम विराम लेते हैं, किसी अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक दो प्रश्न हाँ, महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद फिर कभी जो है वो अपना प्रभाव छोड़ दिया और धीरे धीरे जो है सारे जो सिस्टम थे सबने अपने अपने धर्म का पालन छोड़ दिया। जो क्षत्रिय थे राजा थे उन्होंने अपने धर्म का त्याग किया, जो ब्राह्मण थे शुरुआत ब्राह्मण से हुई क्योंकि स्वामी जी ऋषि के पुत्र ने पहली बार गलती किया और इसका परिणाम होने के लिए शुरू हो, तो कहीं ना कहीं गलती होती है धर्म के पालन में जिसके कारण से व्यवस्था करती है। तो परीक्षित महाराज के बाद कभी का आत्मा जन्म से हुआ था ना, तो दोबारा जन्म नहीं किया ना उनको, तो भगवान के धाम से चले गए ना भगवतम सुनन ऐसे से पढ़े भगवतम सुनन तो मृत्यु के समय उनको भगवान का स्मरण हम लोग भगवान के साथ सुने। नहीं बार बार आता है बार बार ये 4,27,000 साल गुजर हुआ शास्त्र बताते हैं कि 4,32,000 कलयुग के ऊपर इसे 5,000 मिल गया है। 3102 बीसी में द्वापर स्वर्ग हुआ था और कलयुग शुरू हुआ था। तो जैसे ही भगवान की धरती से भगवान कृष्ण जिस दिन धरती को छोड़ ले गए उस दिन कलयुग का आगमन हुआ। ये जो है वही बात कुछ होगी अमेरिका कॉलेज के लिए बताया कि इंडिया में कॉलेज के लिए बताइए सुनो तो कहाँ कॉलेज होता है इंडिया में कर ले चल इंडिया में कर ले क्या उससे पहले अमेरिका में नहीं हुआ था उसी तरह से भगवान भी हमेशा युग के अनुसार अवतार होता है। जैसे कलयुग में कल की अवतार होगा और जब भी कलयुग आएगा तो कल की अवतार होगा, जब भी श्रेष्ठ आएगा तो फिर राम का अवतार होगा और जब भी द्वापर आएगा तो श्रेष्ठ का अवतार होगा। तो ये शेड्यूल है शेड्यूल है हाँ, तो शेड्यूल हर जब भी आएगा तब होगा यदि कौन पहले हुआ कौन बाद में। फिर कभी कृष्ण आए हैं द्वापर में और फिर से राम आने वाला है त्रेता फिर से आएगा फिर कलयुग के द्वार से सत्य शुरू होगा फिर त्रेता आएगा तो फिर राम आएगा कौन पहले आएगा कृष्ण आ गए ना एक उससे पहले राम आए लेकिन हाँ तो चतुर्युग एक चतुर्युग जो होता है ना उसको चार युगों को जो महायुग बोलते हैं और हजार महायुग मिला के मतलब सॉरी 72 महायुग को मिला के एक मन्वंतर बोलते हैं और 14 मन्वंतर मिला के एक कल्प बोलते हैं और एक कल्प 2 कल्प मिला के ब्रह्मा जी के रूप में जीवन होता है और इस तरह से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं उसके बाद सृष्टि का प्रलय होता है और सब करते हैं। हाँ तो कलयुग 4,32,000 और द्वापर इसका डबल 8,67,000 और त्रेता इसका ट्रिपल 12,96,000 और सत्युग इसका 28,000 और टोटल 4,23,000 एक महायुग हुआ। हरे कृष्ण महामंत्र प्रतीक है और भगवान के भक्तों का संग मिलेगा बहुत आसानी से पड़ेगा पहले इतने आसानी से और बहुत सिंपल प्रोसेस बनाएगा। पहले आप जो 7,000 साल तपस्या करने के बाद 10,000 साल की सभी दिनों में तपस्या की फिर भी पतन हो गया पर यहाँ पे बताया गया कलयुग में केवल भगवान के नाम और कीर्तन कीजिए उससे वही फायदा मिलेगा क्योंकि पहले 7,000 साल तक तपस्या कर रहे पर लोगों की उम्र भी अलग अलग होती है कलयुग में पर इसे 100 साल द्वापर में 1,000 साल और त्रेता में 10,000 था और कलयुग में 1,00,000 था इसीलिए 60,000 वर्ष तक तपस्या करते थे आप बेचारे 100 साल की उम्र 60,000 कैसे मिली उम्र भी अलग अलग होती है अलग अलग अब देखिए कलयुग में शुरू में 100 वर्ष था अब धीरे धीरे घट रहा है अभी कितना है 70,000 और कम होगा बताया जाए कलयुग के अंत आते आते लोगों की उम्र जो है वो 30 साल के लगभग हो जाएगी और ऊंचाई भी कम होगी ऊंचाई कम होती जाएगी 3 फीट हो जाएगा जो लंबू होगा बेटी वो 3 फीट का होगा ऊंचाई भी घट रही है घटती आ रही तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं है ना कि कैसे उम्र जो है वो घट रही है कैसे सारा बढ़ती जा रही है तो ठीक है और किसी को प्रश्न अगर हो हाँ जी
कहते हैं कि सृष्टि में सब कुछ का रचना भगवान ने किया यानी अच्छाई और बुराई का भी रचना भगवान ने किया तो भगवान ने अच्छाई का रचना ही किया और उसी नहीं किया बुराई का रचना
किंतु वो चाहते हैं कि आप सुनिए अच्छाई केवल बनाते तो फिर आपको सुनने का अधिकार नहीं रहता ना
क्यों कहते हैं वो
है
क्यों कहते हैं
क्योंकि हम चाहते हैं भगवान नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं भगवान खैर हमको फैसले की देते हैं आप कुछ अगर बुरा करोगे ना तो भगवान मजबूर हो जाते हैं फैसले लेकर यही एक मजबूरी है भगवान की और कोई मजबूरी नहीं तो उन्होंने आपको स्वतंत्र इच्छा दे रखी है और इस इच्छा का अगर आप दुरुपयोग करोगे तो भगवान भी आपको सब 18,000 के बाद बताने के बाद बोले ये सारी सती कथा सुन मतलब सब बता दिया गया है आपको क्या करना चाहिए क्या अब आपकी इच्छा पे ये बंधन करो भगवान कभी फोर्स नहीं करते क्यों क्योंकि फोर्स करेंगे तो भगवान चाहते हम प्रेम करें तो जबरदस्ती नहीं करते तो आप अपनी इच्छा से प्रेम कीजिए अगर आप पूरा करोगे इच्छा करोगे तो भगवान क्योंकि स्वतंत्रता है ना स्वतंत्रता का मतलब दो ऑप्शन होना चाहिए हम से है ना आप अच्छा भी करो बुरा भी करने का स्वतंत्रता है अब आप वॉलंटरीली चूज करो कि मैं अच्छा करूंगा मैं आपसे प्रेम ही करूंगा तो फिर अच्छा हो जाएगा आप बोलो नहीं मैं तो बुरा करूंगा तो भगवान ने दोनों चीजें बनाई लेकिन हमको क्या करना चाहिए अच्छा करना चाहिए इसीलिए भगवान
होगी
चक्र है समय चक्र जिसको होते हैं ना काल चक्र तो काल चक्र चलता रहता है लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सबसे बहाने वाला तो अच्छा हो गया देख सकते नहीं हम लोग इस काल चक्र से बाहर निकल रहे थे हमें भगवान के धाम में जन्म दे जहाँ पे कोई जन्म मुश्किल नहीं है कोई काल चक्र नहीं है एक ऐसा भी लोग है आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम फिफ्थ लेसन में एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो हमारा ओरिजिनल घर है वहां पे हम थे वहां पे ये सब समस्याओं से मुक्ति कोई समस्या नहीं है इसको बोलते हैं भगवान का धाम और हमारा वास्तविक घर हम भगवान हमारे माता पिता है और हम उनके बच्चे हैं तो बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं लेकिन जो बेकार बच्चे होते हैं माता पिता का पालन नहीं करते उनको दूर कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम अच्छे बच्चे बने और हम नहीं चाहते लेकिन हमारे अंदर तो आपका प्रश्न देते ना अगर आप अच्छा चाहोगे बुरा सोचोगे तो भगवान आपको मना करेंगे इस बार अंदर से बोलेंगे मत करो मत करो लेकिन अगर आप जबरदस्ती जीत करेंगे ना जैसे बच्चा जीत करने लगता है तो माँ बाप मजबूरी में ठीक है तो खा ले फिर जब दांत चढ़ेगा तब पता चलेगा तो भगवान फिर बोलते ठीक है तो ले जब समझ आएगी तब तुमको समझ में आएगा ये गलत हाँ तब मन गलत उसी तरह से तो हमारे ऊपर चॉइस है ना फ्री भगवान ने हमको रोबोट की तरह नहीं बनाया कि आपको यही करना है चॉइस किया है हमको अपनी इच्छा से चलना है ठीक है अब आप इसको ब्लेम भगवान को ब्लेम मत कीजिए कि भगवान ने क्यों बुरा बनाया आप क्यों बुरा है कि नहीं आप चुनो और जिस दिन आप बोले कि मुझे बुरा नहीं चाहिए तो भगवान नहीं बनाएंगे अब गवर्नमेंट सरकार ने जेल क्यों बनाया क्यों जेल बनाया सरकार थोड़े ना चाहती कि मैं पैसा खर्च करके जेल में फ्री में खाना और फ्री में कपड़ा दे जाएगी नहीं जाएगी ना पर मजबूरी के कुछ लोग बदमाशी करेंगे तो उनके लिए बनाना पड़ता है लेकिन नहीं उसी तरह भगवान चाहते हैं कि कुछ लोग बुरा चाहेंगे मानेंगे इसलिए उनके लिए अल्लाह को देख कर सकते
हैं।
भक्ति करने से आपको कष्ट से मुक्ति मिलेगी, करीब में रहते हुए भी आप इनसे प्रभावित नहीं होंगे। जैसे बरसात का मौसम है लेकिन आप क्या करते हो छाता ले लेते हो, है कि नहीं? तो बाकी लोग भी रहकर आप छाता के अंदर भक्ति और छाता है कभी जब हम हर किसी महामंत्र का जप करेंगे ना फिर ये छाता है कलयुग के प्रभाव से चाहे प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। आप कलयुग में रहते हुए भी सुख और शांति को रख अपने आप होगा सब कुछ फिर क्या आएगा। हाँ सबके ऊपर आ जाएगा एक ड्यूटी है भगवान चाहते हैं बड़ी अच्छे पर समस्या यही है ना कि जेल में सब कुछ अच्छा कभी होता नहीं क्योंकि वहां पर लोग बनते रहते हैं तो अच्छा होगा तो तुरंत निकाल के बाहर कर दिया जाएगा उसको कहां भेजा जाएगा जहां पे अच्छे लोग रहते हैं भगवान के नाम में। आप जैसे ही आप अच्छा होगे आप शाम तक लोग यहाँ से जाएंगे भगवान के नाम वहां पे सब अच्छे लोग सारे अच्छे लोग एक साथ रहते हैं है ना। तो जेल में आप एक नहीं कर सके कि हमें फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दीजिए है ना, क्या ऐसा हो सकता है जेल में हमें सब फर्स्ट क्लास फैसिलिटी हो जाए। फर्स्ट क्लास फैसिलिटी देने का तो आपको जेल में क्यों रखा जाता है ना। तो जैसे ही आप फर्स्ट क्लास फैसिलिटी के योग्य होंगे तुरंत आपको क्या किया जाएगा जेल से बाहर कर दिया जाएगा और फिर फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दी जाएगी। उसी तरह जैसे ही हम अगर अच्छे बन जाएंगे तो लोग तो फिर उनको यहाँ नहीं रखा जाएगा, वो कहाँ जाएंगे भगवान के धाम वैकुंठ जिसको बोलते हैं वैकुंठ में जाएंगे और वहां पे फर्स्ट क्लास फैसिलिटी वहां पर भाई बहन सब है। आप ओरिजिनल भाई बहन ओरिजिनली जो हमारे संबंध है इनसे वहां पर वहां पे समय का प्रभाव नहीं है, वहां पे जन्म नहीं होता है किसी की मृत्यु नहीं होती है किसी को बुढ़ापा नहीं आता है क्योंकि समय का प्रभाव नहीं है। दिवस चाहिए समय नहीं छोड़ता है, जो बच्चा है बच्चा ही रहेगा हमेशा और जो बूढ़ा है बूढ़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समय के प्रभाव से बाहर है। तो इसलिए हमको ये नहीं समझा कि यही पे अच्छा होकर करेंगे, यहाँ पे अच्छा जैसे ही आप अच्छा हो जाएंगे सब लोग अच्छा हो जाएंगे फिर यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच नाउ वी विल हैव सम क्विज क्वेश्चन एंड इफ यू आंसर देन यू गेट अ प्राइज। ठीक है तो पहला प्रश्न ये है हमने बताया कि इस संसार में हम भगवान को क्यों नहीं मानते हैं, क्या कारण है? कौन बताए करेक्ट? हाँ आपने क्या बताया करेक्ट आपका नाम? हाँ इलूजन किस रूप में आती है? माया कैसे मीडिया मीडिया तो सावधान रहिए तो आपको बता दिया कहाँ से माया आएगी है कि नहीं। तो आपको सब कुछ बता रहे हैं हम थोड़ी देर देखिए हर स्पॉट बता रहे हैं यहाँ से समस्याएं आती है मीडिया आपको डिस्लाइक करेंगे और ज्यादातर मीडिया न्यूज पेपर ये सब जितने भरे हुए हैं और इतना कवर कर दिया गया है माया द्वारा कि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको जॉब भी मिलेगा आपको उसको जबरदस्ती पढ़वा दे दी क्योंकि किसी ने कौन सा रखे एग्जाम तो आप पढ़ोगे भी जबरदस्ती और फिर गलत लिखोगे तो गलत पढ़ोगे और उसी में आप फंसे रहेंगे क्योंकि ये मीडिया है माया कर जो है वो मीडिया के रूप में आता है और आपको जबरदस्ती करना ही है एजुकेशन में डाल दिया डायबिटीज को एजुकेशन में डाल दिया माया भगवान जी ने डायबिटीज नहीं बताता उसको एजुकेशन में डाल दिया पढ़िए तो आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा यहाँ भगवान नहीं है आप नहीं भी चाहते तो पढ़ो लिखो एग्जाम में कि भगवान है क्योंकि मार्क्स चाहिए और मार्क्स चाहिए क्योंकि जॉब चाहिए। तो देखिए कितना माया का प्रभाव ज्यादा है कभी कि गलत जबरदस्ती करवाते हैं और उसके लिए मार्क्स दे रखते हैं है ना। हाँ जी ठीक। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर भगवान है और भगवान का नाम का जप करना चाहिए, हमें सब कुछ अच्छा करना चाहिए, पर हम क्यों नहीं करते?
विश्वास नहीं करते,
विश्वास नहीं करते, करेक्ट। तो पहला चीज क्या करना चाहिए हमें? विश्वास। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है ना। तो मंदिर में आते हैं तो विश्वास हो जाता है, लेकिन जैसे बाहर जाएंगे क्यों? क्योंकि अविश्वासी लोगों में से कम करेंगे। तो हम विश्वास, थैंक यू। आपका नाम? थैंक यू वेरी मच। विश्वास कैसे मिलेगा?
भक्त
दर्शन। हाँ आपका नाम? आपका नाम?
पंकज।
पंकज, ओ पंकज। थैंक यू वेरी मच। संत से अगर आप दिवाली से संत करेंगे तो दिवाली बनेगी, शराबी से संत करेंगे शराबी बनेगी, पर भक्त से संत करेंगे तो विश्वास करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई जाइए ना बाहर भी कीर्तन।